शांति। मेरा आज का टॉपिक है गुड मैनर्स इन लैंग्वेज, भाषा में शिष्टाचार। तो कहा जाता है कि बोल में, कि वाणी में इतनी शक्ति है कि जो कई लोगों के दिल को जीत सकती है, या लोगों के दिल में इतनी नफरत भी पैदा कर सकती है जो हम कितनी भी कोशिश करें तो इसको निकाल नहीं सकते। और क्या कहा जाता है वाणी के लिए, कि हमारी जैसी वाणी होगी, जैसे बोल होगा, वैसी हमारी पहचान बन जाती है। कि कहीं बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बोलते ही रहे और हम सुनते रहे, और कईयों का क्या होता है कि ये कब पूरा करे। तो हमें देखना है कि हमारी वाणी कैसी है। या कईयों के जाने से क्या होता है, हमारे जाने से कई जगह लोग खुश हो जाते हैं, और कईयों का क्या होता है आने के सोच, कोई कहेंगे कि आने वाले हैं तो पहले से ही टेंशन आ जाती है कि आकर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। जब जाते हैं तो क्या होता है, खुश होते हैं कि हंस गए। तो ऐसे हमें भी देखना है कि हमारी वाणी व्यवहार कैसा है, जो लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वाणी पर संयम होना चाहिए। तो सुना है कि दीदी मनमोहिनी जो थी, वो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी कि कोई कभी ऐसा बोले तो उसको बुलाकर कहते थे कि कैसे बोलना है। तो जो व्यक्ति ये सीख जाए कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, और कितना बोलना, और कैसे बोलना, क्यों बोलना, किस लिए बोलना, किससे बोलना है, तो क्या होता, वो पूरी जिंदगी जीत जाता है। तो कई बार क्या होता है कि पहले हम बोल देते हैं, फिर सोचते हैं कि ये तो हमने गलत बोल दिया, इससे तो अच्छा होता नहीं बोलते, बोलकर फंस जाते हैं। तो ऐसी एक कहानी है, बोला और मरा, कि एक राजा था, वो बहुत गुणवान और विद्वान वैसा था, लेकिन एक कमी थी उसके राज्य में, उसको संतान नहीं था। तो उसको बहुत दुख था कि मुझे संतान नहीं है। तो उसके राज्य में एक गुरु और उसका शिष्य रहता था। तो राजा ने सोचा कि मैं गुरु जी के पास जाके आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझ पर कृपा करो, जो मुझे संतान हो। तो राजा गुरु जी के पास जाता है, तो गुरु जी क्या कहता है कि तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति है ही नहीं, कि इस जन्म में तो तुम्हें संतान नहीं होगा। तो राजा दुखी होकर बाहर जाने लगता है। तो बाहर उसका शिष्य बैठा होता है गुरु का। तो शिष्य देखता है कि राजा तो दुखी हो गया। तो शिष्य को भी ज्ञान था, तो वो राजा को आशीर्वाद दे देता है, कि माना बोल देता है कि जाओ, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तो फिर वो राजा तो खुश होके फिर चला गया। तो शिष्य गुरु जी के पास जाकर बोलता है कि आपने क्यों ऐसा कहा, कि आप तो कर सकते थे। तो गुरु ने कहा कि इसके भाग्य में तो था ही नहीं, अब कि आपने कहा कि आपको संतान प्राप्ति होगी, तो अब तुम्हें इस जन्म मरना होगा और राजा के घर जाके जन्म लेना होगा। तो वो बोला कि बोला और मरा। तो थोड़े दिन बाद वो शिष्य ने शरीर छोड़ दिया और राजा के घर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चा बोलता नहीं था। वो कितना बड़ा हो गया फिर भी नहीं बोलता था। राजा ने पूरी कोशिश की, सब विद्वानों सबको बताया, लेकिन वो बोलना नहीं सीखा। एक दिन वो राजकुमार वो अपने अंग रक्षकों के साथ जंगल में गया, तो जंगल में दो पेड़ पे दो पक्षी थे। तो एक पक्षी तो शिकारी आया तो एक पक्षी दिख रहा था, तो उसको तो तीर मार लिया। दूसरा छिपा हुआ था, लेकिन ये पक्षी को मरा हुआ देखकर वो भी बोलने लगा, तो शिकारी की नजर में आ गया, तो उसको भी शिकारी ने मार दिया। तो ये राजकुमार बोलने लगा, बोला और मरा। तो फिर वो जो अंगरक्षक थे उसने राजा को जाके बताया कि राजकुमार तो बोलता है। तो राजा ने फिर बोला कि अब तुम बोलो, तो बोले नहीं हम। फिर वो कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला वहां जो जंगल में बोला था वो। तो राजा को लगा कि ये अंगरक्षक तो झूठ बोल रहे हैं। तो राजा ने सारे अंगरक्षकों को सजा सुनाई कि तुम सबको मृत्युदंड मिलेगा। तो वापस राजकुमार बोला कि बोला और मरा, कि यहाँ अंगरक्षक बोले तो मरे। तो फिर राजा ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तुम इतना ही क्यों बोला, बोला और मरा। तो उसने सारा कहानी सुनाई कि पास्ट में पिछले जन्म में मैं वो शिष्य था, आप उधर आए थे, तो मैंने आपको जो वरदान दे दिया था कि आपको संतान प्राप्ति होगी, तो इसलिए मैं बोला, तो इसलिए मुझे मरना पड़ा। तो ऐसे हमें भी सोच समझकर बोलना चाहिए कि बोलकर हम कहीं फंस ना जाए। तो मैं देखेंगे कि हमारी वाणी में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे बोल में मधुरता होनी चाहिए, जो दूसरे सुने तो वो सुनकर खुश हो जाए, उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। तो इसलिए कि इंग्लिश में कहा जाता है कि इफ यू डोंट हैव ए मनी इन योर पॉकेट, मस्ट हैव ए हनी इन योर टंग, कि आपकी जेब में पैसे नहीं है तो कोई चलेगा, लेकिन जब आपकी वाणी में मिठास होगी तो आप पूरी जिंदगी आपके कैसी हो जाएगी, मिठास भरी हो जाएगी, सबके प्रिय बन जाएंगे। तो से हमारी वाणी में क्या होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। दूसरा कि हमारी वाणी कैसी हो जो दूसरों को उमंग उत्साह दिलाए, कैसे बोलनी जो नहीं बोलने की जो सामने वाले सुनकर ही दुखी हो जाए, घायल हो जाए। मान लो कि एक बच्चे का रिजल्ट आता है, वैसे पढ़ने में होशियार है पर रिजल्ट मान लो 60% ही आया, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि तुम तो ऐसे ही वो कितना बोले पढ़े नहीं ये नहीं किया, तो ऐसे उसको क्या पूरा सुनाने लगते हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसकी जगह ऐसे बोलना चाहिए, अच्छा है फेल तो नहीं हुआ ना, पास तो हो गया कि अभी थोड़ा ऐसे बोल कि थोड़ी और मेहनत करना तो नेक्स्ट टाइम 70 आएगा, तो ऐसे उमंग उत्साह दिलाएंगे, उसको मदद करेंगे कि कोई नहीं आगे से ध्यान रखना, आगे 70 आएगा फिर 80 आएगा फिर आगे बढ़ सकेंगे। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी क्या होता है, जब हम किसी को देखते है या कोई गिर जाता है तो क्या कहते हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, अब कल्प कल्प तो और हम क्या बोल देते हैं इसको कि अब कल्प कल्प तुम्हारी हार होगी। वैसे सत्य भी है कि जो किया वो उस कल्प में वापस होना ही है, लेकिन इसकी जगह हम उसको क्या कह सकते हैं कि ब्राह्मण जीवन तो खत्म नहीं हो गया ना, कि तुम आगे बढ़ सकते हो। कोई ऐसे उनको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि कितना कि कई लोग ऐसे हैं जो गिरकर भी वापस उड़ गए और आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम भी ऐसे आगे बढ़ सकते हो। फिर आगे कि हमारे बोल में शुभ भावना शुभ कामना हो, कि हम जो बोले उसमें दूसरे को शुभ भावना मिले, लेकिन शुभ भावना कब होगी, जब अंदर भी शुभ भावना होनी चाहिए, सिर्फ बोल में नहीं। कि मान लो कोई कोई को अचानक से कोई बीमारी आ गई और एडमिट है, तो हम दो तीन बाद उसके मिलने गए तो बाहर से क्या बोलेंगे कि जल्दी ठीक हो जाओ, अच्छा है, लेकिन अंदर क्या कहीं सोचते हैं कि पता ही था कितने विक्रम किए इस जन्म में ही, तो अब भुगतो। तो अंदर ऐसा सोचेंगे और बाहर से कहेंगे ठीक हो जाओ, तो वो शुभकामना हमारी काम नहीं करेंगी। बोल सिर्फ हुआ ना, बोल से नहीं, अंदर भी, कि अंदर भी शुभकामना शुभ भावना होनी चाहिए। फिर आगे की हमें स्वमान में स्थित होकर बोलना है, कि जब हम स्वमान में स्थित होकर बोलेंगे तो दूसरों को भी उस बोल की इफेक्ट होगी और उसको भी लगेगा कि स्वमान की मान देने वाले बोल होने चाहिए। कि जैसे हमारे क्या स्वमान है कि हम इष्ट देवी है, तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, महादानी वरदानी होने चाहिए। कि हम पूर्वज है, तो हमारी बोल कैसे होने चाहिए, सबकी पालना करने वाले होने चाहिए। विश्व कल्याणकारी है, तो बोल में क्या होने चाहिए, जो सबका कल्याण कल्याण हो। फिर हमारे बोल सत्य होने चाहिए, लेकिन सत्य भी ऐसे नहीं कि सीधा बोल देना है जो दूसरे दुखी हो जाए, बात घुमा फिरा कर नहीं, घुमा फिरा के भी नहीं बोलना है। तो सत्य ऐसे बोलना है जो सामने वाले को प्रिय लगे, ऐसे नहीं कि वो सुन के दुखी हो जाए। तो सत्यता के साथ साथ क्या हो, स्नेह भी समाया हुआ हो। और हमारी बोल में क्या होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। कि बोल में शिष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कि जो बोले वो क्लियर बोले, कि ऐसे घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। तो हम देखेंगे कि बाबा क्या कहते हैं कि हमारे बोल कैसे होने चाहिए। तो एक एक मुरली है, उसमें बाबा ने व्यर्थ बोल का सारा बताया है कि ब्राह्मणों के कितने 5 प्रकार के उसमें बाबा ने व्यर्थ बोल बताए हैं। फोर्टींथ जनवरी 90 की, तो उसमें बाबा ने 5 प्रकार के व्यर्थ बोल बताए हैं। कि पहला बताया कि लिमिट से परे हंसी मजाक, कि कहीं समझते हैं कि रमणीकता तो अच्छी चीज है, लेकिन उसमें बताया है कि जब कि स्थान व्यक्ति और परिस्थिति वायुमंडल और संगठन उसको देखकर जो भी हंसी मजाक वगैरह करते हो तो वो ठीक है, लेकिन इनमें से एक भी बात नहीं है तो वो रमणीकता की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरे बाबा ने बताया है दूसरे प्रकार के व्यर्थ वो साधारण बोल कि टोंटिंग वे, कि कईयों की क्या आदत होती है, सीधा कभी बोलते ही नहीं है, टोंट में ही सुना के चले जाते हैं। तीसरा बताया है कि वो समाचार इकट्ठे करते हैं, कि फिर उस के आसपास के सारे समाचार फिर सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते रहते हैं। फिर चौथा बाबा ने बताया कि कुछ सेवा समाचार है, लेकिन सेवा समाचार के साथ साथ क्या करते हैं, जो सेवाधारी है उसकी कमजोरियों का वर्णन। तो ये मिक्स चटनी, तो बावन का ये भी क्या है, मिक्स चटनी बनाते, ये भी व्यर्थ है। और पांचवा बताया अयुक्ति युक्त बोल, की जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं है। तो ऐसे 5 प्रकार के बोल है जो हमें नहीं बोलने हैं। उसमें पूरा बताए कि जो व्यर्थ बोल है उसकी निशानी क्या होगी, कि वो बहुत ज्यादा बोलेगा और समय और संगठन प्रमाण शांत रहेगा, लेकिन अंदर से क्या महसूस करेगा कि किसी ने उसको शांत रहने के लिए बांध के रखा हुआ है, मजबूरी से बंद चुप रहेगा। बताया कि उसकी नुकसान क्या होता है, तो एक तो शक्ति वेस्ट होती है, शारीरिक एनर्जी वेस्ट होगी, और दूसरा समय भी वेस्ट जाएगा। और इसका सुनाने का तरीका कैसा होगा, जो व्यर्थ है वो छोटी सी बात को बहुत लंबा कर सुनाएंगे, जैसे कथा सुनाते हैं। तो जो कथा सुनाते हैं वो क्या होता है, बड़ा रमणीक होता है कि बावन का इंटरेस्ट से सुनाते हैं, खुद भी रुचि से सुनते हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भी क्या उसमें भी रुचि पैदा कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कथा। लेकिन इसका सार कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, साज है। तो उसमें बाबा रामायण और महाभारत का मिसाल दिया कि दोनों में क्या हुआ कि रामायण में राम को वनवास जाना पड़ा और महाभारत में कौरव और पांडवों की युद्ध हुई। तो ये क्या है, कथा का रिजल्ट हुआ, सार तो कुछ नहीं हुआ। तो भगवान का तुम फिर आगे बताया कि तुम कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो, तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, सबका महावाक्य महान आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी हो, तो बोल महावाक्य होने चाहिए, जो दूसरों को भी महान बनाए। महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, और जब चाहे तब बोलते रहो, तो उसको भी महावाक्य नहीं कहा जाता। तो उसका समय और स्थान देखकर युक्ति युक्त बोल बोलने हैं, जो स्वयं और दूसरों के लिए भी लाभदायी हो। फिर और एक दूसरी मुरली है, उसमें टीचरों से मुलाकात में बाबा ने कहा है कि तुम्हारी वाणी में जोर भरा हुआ हो, जो सामने वाले के हृदय विदीर्ण हो जाए। तो बावन का जोर के साथ साथ क्या हो, स्नेह भी हो। पर होता क्या है, या तो सिर्फ स्नेह होता या जोर होता है। तो या कभी बहुत तेज बोलते या कभी हल्का बोलते हो, तो असर नहीं होती है। जब दोनों का बैलेंस होगा तभी असर होगी और सेवा की वृद्धि होगी। जब जोश में आके बोलते हैं तो हाव भाव भी कैसे हो जाते हैं, जोश वाले तो सामने वाले क्या समझते हैं कि ये अपने अभिमान में आकर बोल रहे हैं, या तो हमारा अपमान कर रहे हैं, नीचे दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, तिरस्कार लगता है कि ये हमारा तिरस्कार की भावना से देखते हैं। लेकिन जब जोहर और स्नेह दोनों का बैलेंस होगा, तो जो तिरस्कार है वो तरस में बदल जाएगा। तो इसमें भगवान का तुम्हें स्पष्ट भी देना है कि जो ज्ञान है वो घुमा फिरा कर नहीं, स्पष्ट रीति से देना है, लेकिन साथ में क्या हो, स्नेह हो। तो इसमें बाबा ने माँ का उदाहरण दिया है कि जब माँ बच्चों को शिक्षा देती है तो कड़वे बोल भी होगे, जोश वाले बोल भी होगे, लेकिन दुख नहीं देते। बच्चे क्या समझते हैं, माँ हमारी नहीं माँ तो लेकिन बच्चे क्या समझते हैं कि माँ हमारी स्नेही है, कल्याण के लिए कह रही है। तो हम भी जब स्नेह युक्त होकर बोलेंगे तो सामने वाले क्या समझेंगे कि स्नेह की मूर्ति है, जगत अम्बा है, ऐसा समझेंगे। तो बोल लगेंगे लेकिन कड़वे नहीं, यथार्थ लगेंगे। तो हमें भी बोल में क्या होना चाहिए, स्पष्ट भी हो और साथ में स्नेह भी हो। फिर एक और मुरली में बाबा ने कहा है कि व्यर्थ बोल और दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले बोल, ऐसे बोल जो दूसरों की स्थिति गिर जाए या नींद उड़ा दे, ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए, महावाक्य होने चाहिए। तो भक्ति मार्ग में भी इसका यादगार है कि जब महात्मा लोग बोलते हैं तो सुनने वाले क्या बोलते हैं, सत्वचन महाराज। फिर भले वो झूठ हो या फिर व्यर्थ हो, गपोड़ा भी लगाते हैं, फिर भी क्या कहते रहते हैं, सत्वचन। तो तो ऐसे कि मावन का भक्ति मार्ग में भी अंत तक यादगार है कि महात्मा के बोल के पीछे बोलते हैं सतवचन महाराज, तो हमारे बोल भी ऐसे सत्य होने चाहिए जो जिसमें दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। अगर ब्राह्मणों के बोल में सिद्धि भी है, अगर हमने कुछ बोल दिया गलत बोल दिया तो सामने वाले क्या हो जाएगा, श्रापित भी हो सकता है। तो हमारे बोल सत्य और कल्याणकारी होने चाहिए। फिर उसमें कहा है बाबा ने कि बोल कैसे होने चाहिए कि सारी युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, राज युक्त, सारी युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त, वरदानी वरदान युक्त, स्लोगन युक्त नियुक्त होने चाहिए। फिर भावन कहा है कि तुम्हारा स्लोगन ही क्या है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझकर बोलो। लेकिन भावन का कई बच्चे कहते हैं कि क्या करे, हमारी आवाज ही तेज है। तो बाबा ने कहा है कि माया जीत बन सकते हो तो आवाज जीत ऐसा ही है कि माया जीत बन सकते हो। तो ऐसा मुंह का भी कम ज्यादा तो ऐसे तो उसमें भी कहा ना सुनाई दे ऐसे बोलना है, ज्यादा तेज भी नहीं और धीरा भी नहीं। तो ध्यान से सुनना चाहिए। तो भवन कहा कि माया जीत बन सकते हो तो आवाज जीत नहीं बन सकते, कि तुम तो अपनी धुन में बोलते रहते हो लेकिन जो आते जाते लोग हैं वो क्या समझते हैं कि झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, इससे डिसर्विस वायुमंडल भी खराब होगा और डिसर्विस हो जाती है। तो बोल कैसे होने चाहिए, धीरे होने चाहिए, इतने भी धीरे नहीं जो सामने वाले को सुनाई ना दे। वो अलग बात है और हमारे बोल में क्या होना चाहिए, निश्चय और नशा होना चाहिए कि हम जो बोले उसमें पूरा हमें निश्चय होना चाहिए। अगर खुद को ये निश्चय नहीं होगा तो सामने वाले को भी निश्चय नहीं आएगा। कि कई लोगों की आदत क्या होती है कि करते कुछ नहीं लेकिन बोलते ज्यादा है और बड़ा इतना मीठा बोलते हैं और बड़ा चढ़ा के बताते हैं, जो सामने वाले या तो जो इंचार्ज जो सीनियर होंगे वो क्या मान लेंगे कि यही सब कुछ करते हैं। तो ऐसे कईयों की आदत होती है जो करते कुछ नहीं और इतना मीठा और बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं पर इसमें खुद का तो नुकसान ही होगा ना, कला है तो कि जब हम बोलेंगे उसका असर कब होगा, जो बोल रहे हैं वो स्वयं में धारण किया हुआ हो। कि मान लो कोई क्लास करवाते हैं लेकिन मान लो कि सिंपल लेते हैं कि खान पान की धारणा की क्लास दे दी और क्लास करवा रहे हैं लेकिन खुद में ही वो धारणा नहीं होगी और जो सामने बैठे होंगे उनको पता होगा कि ये भी यही सोचते रहते हैं कि उधर जाके खाए उधर जाके खाए, तो इसका असर कुछ नहीं होगा। कि हमारे जो बोल है उसमें पवित्रता होनी चाहिए, विकारों का वायु नहीं होना चाहिए। हाँ जो हम बोले वो डबल मीनिंग कि बोल जो है वो यथार्थ होना चाहिए कि ऐसे बोल नहीं जिसका दो मीनिंग हो। तो हम जो अच्छे वाला बोल बोलेंगे लेकिन सामने वाला क्या लेगा, उसका दूसरा पहलू नेगेटिव लेगा। कि हमारे बोल कैसे होने चाहिए, कमेंट्री जैसे होने चाहिए, जो बोले तो सामने वालों को भी बाबा की याद।
बहुत ही धीरे धीरे बोलते वैसे बोलना है।
ऐसे बोल होने चाहिए जो सामने वाला कहे कि वंस मोर हो गया। हाँ कि हमारे बोल कैसे होने चाहिए जो सामने वाले चात्रक बनकर सुने कि यह कुछ बोले और हम सुने। कि बोल में भाषा की शुद्धि होनी चाहिए। कि हम कि किसी से भी बात करें तो उसका रिगार्ड रखकर बात करनी है, तुम कहकर नहीं बोलना है, आप कहकर बोलना है। हाँ किसी को पागल नहीं, पागल अब शब्द नहीं बोलने हैं। किसी को दुख हो ऐसा नहीं बोलना है, मान लो कोई अंधे है लूले है तो उसको सीधा ऐसे कहकर नहीं बुलाना है कि ये अंधे है लंगड़े, ऐसे सीधा नहीं कहना है। हाँ वही तो पूरे महाभारत हो गए कि हमारे बोल जिससे किसी को दुख हो, कोई दिल से कष्ट हो जाए, दूसरों को अच्छे नहीं लगे, ऐसे नहीं, जो हम नहीं चाहते हैं कि हमें लोग ऐसे बोले तो हमें भी दूसरों के लिए ऐसे नहीं बोलना है। हम जो चाहते हैं कि हमें लोग हमारे साथ लोग कैसे बात करें तो हमें भी ऐसे ही दूसरों से बात करनी है। अब शब्द नहीं बोलना है कि डबल मीनिंग वाले बोल नहीं बोलने हैं जिसमें विकार की बात समाई हुई हो ऐसे। हाँ तो वो उनका ऐसे भी नहीं बोलना है जो किसी को कि कोई बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना है। नींद में नहीं बोलना, नींद में नहीं बोलना। मुरली क्लास मेडिटेशन के समय कोई पढ़ रहा है कोई सो रहा है तो ऐसे वक्त पे बहुत तेज नहीं बोलना है, या तो वहीं से दूर जाके फिर बोलना है। हाँ कि ऐसे बोल नहीं होने चाहिए जो कोई अहंकार, क्या अहंकार वाले बोल नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं जो कोई नाराज हो जाए, कोई रुस जाए रुट जाए, ऐसे बोल भी नहीं होने चाहिए कि सिर्फ अपनी ही महिमा करते रहे, ऐसे भी बोल नहीं होने चाहिए कि मैंने ये किया वो किया वो। भोजन करते समय नहीं बोलना, अपने आप से बात करनी है। ओम शांति।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे क्या। प्यारे थे वो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो, ला 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 ला। मैं कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, ये बिरहा ये दूरी तो कल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए, परम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से गो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, ला 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 बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, थोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी, करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, ला 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 ला।